Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तब इस अवस्था के परिपूर्ति तो आपके कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आपकी कृपा होगी तो विघ्न भी प्रवेश नहीं करेंगे, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वशक्तिमान हैं इसलिए कार्य भी पूरा हो जाएगा, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वज्ञ हैं इसलिए जो कार्य हम करते हैं उसमें विधि भी पूरी हो जाएगी, त्रुटि भी नहीं रहेगी। इन भावों को हृदय में धारण करते हुए कार्य आरंभ में मंगलाचरण करने की हमारी वैदिक परंपरा है, और स्वयं शंकराचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खुद मंगल रूप होते हुए भी मंगलाचर रहे हैं, तो गीता में जो बताया है, यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते शिष्य शिक्षा यही। शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी गुरु को मंगलाचरण करते हुए कर्म का आरंभ करे, अन्यथा फिर वह कर्म पूरा होने पर अहंकार की वृद्धि होगी, मैंने किया। क्योंकि मंगलाचरण कर्म करने से कर्म आरंभ किया है तो भगवान ने पूरा किया, ये देख लो। अब कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर दुखी होगा, रोएगा। मंगलाचरण करते हुए कर्म करोगे तो भाई ये भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी होती पूरा हो जाता, उसकी इच्छा नहीं है तो पूरा नहीं हुआ, रुक गया, और क्या। तो हम क्या, हम तो शूद्र है, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, पूरा करना भगवान का काम है, तो ग्लानी नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा। सबसे पहले भगवान शिव ने, शंकराचार्य ने मंगलाचरण में शिव और शक्ति को दोनों को संयुक्त स्मरण किया, संयुक्त, केवल शिव का स्मरण नहीं शक्ति को भी। यह श्लोक शिव शक्ति संयुक्त मंगलाचरण का। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना हो, नहीं सुना हो, महात्माओं ने बताया है। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। नमः करते हुए कार्य आरंभ करते हैं तो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, यानी नमः शब्द का अर्थ ही होता है कि इस कार्य में मैं प्रमुख नहीं हूं, इस कार्य में आप ही प्रमुख हैं, इसकी सफलता और असफलता में आपका ही योगदान रहेगा, मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी। मैं ना ना मा ना मा मैं नहीं, ये जो कुछ है आप ही है। षटपदी में शंकराचार्य जी लिखते हैं ना, सामुद्रो ही तरंगा न क्वचन तारंगो समुद्र, देख लो। सत्य भी भेदापगमे नाथ, ये श्लोक है, हे नाथ ये बिल्कुल सत्य है, पारमार्थिक सत्य है कि आप और मेरे बीच में रंच मात्र भी भेद नहीं है। सत्य भी भेद अपगम, सारे भेदों का अपगम है। सत्य भी भेद अपगमे नाथ, फिर भी तवा अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो। क्या सुंदर बात, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो। भक्त लोग तो यही कहते हैं कि भगवान तो मेरे भगवान है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान तुम मेरे नहीं हो। हाँ। क्या सुंदर बात है, ये न समझने वाले इस श्लोक का अर्थ नहीं कर पाते हैं। इसका भाव ये है, हे परमात्मा मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपके होने न होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता है। क्या समझे, इसका अर्थ यह है मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है। आपकी कृपा है, आपका अस्तित्व है, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, तब मैं हूं। लेकिन इसका उल्टा व्यतिरेक नहीं है, मेरी कृपा है तब आप हैं, ऐसा नहीं है। हा? जीव की कृपा होकर परमात्मा है कि परमात्मा की कृपा से जीव है? तब क्या हुआ? शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? वैष्णव लोग इसका गलत अर्थ कर देते हैं। तुम मेरे हो कहो, भक्त ये कहे कि तुम मेरे हो, भगवान मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब क्या? मेरे हैं का मतलब हो गया कि भगवान छोटा हो गया, मैं बड़ा हुआ। तुम मालिक हो गए ना। तुम किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब कहते हो? बोलो है? बोलो ना, किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब बोलते हो? जब उस पर आधिपत्य है, उस पर पूरा हक है, उस पर पूरा स्वामित्व है, तब ना तुम कहोगे कि ये मेरा है, है? तो उस वस्तु तुम पर आश्रित हुआ कि नहीं, तुम्हारे पर आधारित हुआ कि नहीं, है? क्या परमात्मा ऐसा है? तभी तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हाँ, सत्यपि भेदापगमे नाथ। ये बात बिल्कुल सत्य है, वेदांत दृष्टि से विचार करें तब आपके और मेरे बीच में भेद नहीं। तत्व दृष्टि से विचार करें तो महाकाश और घटाकाश में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी घट उपाधि के चलते घटाकाश महाकाश के आश्रय में है, महाकाश पर आश्रित है घटाकाश, लेकिन घटाकाश महाकाश घटाकाश पर आश्रित नहीं है। क्या दुनिया में सब घटाकाश मिलकर एक महाकाश बना है, ऐसा है क्या? इसका मतलब घटाकाश नहीं रहेंगे तो महाकाश ही नहीं रहेगा क्या? हैं? घटाकाश क्या बोल रहा है? महाकाश से बोलो, तब जाकर ये स्तोत्र का अर्थ बुझो, समझोगे तुम लोग। घटाकाश महाकाश से क्या कह रहा है? प्रार्थना कर रहा है घटाकाश, मान लो महाकाश से, हे महाकाश सत्य भी भेदापगमे। ये वास्तविक सत्य है कि तुम्हारे और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी ये घट उपाधि के चलते आप में और मेरे में भिन्नता हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि आप बड़े हो गए मैं छोटा हो गया। किसके चलते? उपाधि के चलते। इसीलिए मैं तुम्हारा हूं, यानी मेरे होने में तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे होने में कौन बोल रहा है? घटाकाश किससे? महाकाश से। इसी तरह कौन बोल रहा है? जीव किससे? परमात्मा से। ये अंतकरण देह उपाधि न रहे तब तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं। अंतकरण सूक्ष्म स्थूल शरीर उपाधि आदि न रहे तो आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी इन उपाधियों के चलते आप में और मेरे में भेद खड़ा हो गया। आप महान रह गए, मैं क्षुद्र हो गया। तवाहम न माम की नस्तुम, आप मेरे हैं, है? तब अहम मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप मेरे नहीं हैं, है? क्या मैं मर जाऊं तो आप रोओगे? कौन बोल रहा है? जीव किससे? भगवान से। क्या कह रहा है? क्या मैं मर जाऊंगा तो आप बैठे बैठे रोओगे? बोलो, जीव मरेगा तो परमात्मा बैठे बैठे रोएगा है? तुम लोग बोलो ना भाई, नहीं रोएगा? तुम क्यों रोते हो? अब परमात्मा मरेगा तो तुम रोओगे ही रोओगे, नहीं रोओगे है? अब परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? ये किसने कह दिया तुमको? परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे हैं? महाकाश का नाश होगा कि नहीं? तो महाकाश का नाश नहीं होगा तो क्या घटाकाश का नाश होगा? घट उपाधि का नाश होगा, घटाकाश का नाश नहीं। तुम नहीं समझते हो इसलिए तुम कह देते हो कि परमात्मा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे भाई, परमात्मा न रहना संभव ही नहीं, इसलिए तुम्हारा न रहना भी संभव नहीं है। सत्य विभेद अपगमेनाथ तव अहम न मामकी नस्तुम। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, सामुद्रोही तरंग। कोई भी व्यक्ति तरंगों को देखता है और पूछता है कि यह तरंग किसका है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि समुद्र का तरंग है। जबकि तरंग और समुद्र में कोई रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है। समुद्र और तरंग में रंच मात्र भी भिन्नता न होते हुए भी कहने के समय में कहने वाला क्या कहता है, ये तरंग किसका है? पूछने पर उत्तर क्या देता है, समुद्र का है। और कोई पूछे समुद्र किसका है? है समुद्र किसका है, तो कोई उत्तर देता है कि तरंग का है। तरंग को तो समुद्र कहते हैं, समुद्रे भव समुद्र, लेकिन समुद्र को कोई तारंग कहेगा? तारंग माने तरंग से होने वाला है क्या समुद्र? नहीं है। सत्य विभेदापगमेनाथ तवाहम न मामके नस्तम सामुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र। बोलो, समुद्र तारंग नहीं है, तरंग सामुद्र है, लेकिन समुद्र तारंग नहीं। समुद्र तरंग से पैदा नहीं हुआ, तरंग पर जी नहीं रहा है, तरंग पर आश्रित नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? इसी तरह जीव परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा जीव का नहीं है। परमात्मा का है इसलिए जीव पर परमात्मा का अनुशासन चलेगा। परमात्मा जीव का नहीं है इसलिए क्या जीव परमात्मा पर अनुशासन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमात्मा जीवात्मा का नहीं है इसलिए जीवात्मा का अनुशासन नहीं चलेगा। ये भक्ति भाव है, द्वैताद्वैत भक्ति भाव। मूल रूप में अद्वैत होता हुआ भी औपाधिक भेद को स्वीकार करके शंकराचार्य जी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं शिवानंद लहरी के माध्यम से। पहला श्लोक बड़ा सुंदर है, मंगलाचरण। कलाभ्याम चूड़ालम कलाभ्याम चूड़ालम कृतशशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे शिवाभ्याम अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर् भवाभ्याम आनंद पुरदनुभवाभ्याम नतिरियम इयम नति। ये मेरा नमस्कार है, इयम नति मेरा यह नमस्कार है। किसके प्रति नमस्कार है ये तुम्हारा? कलाभ्याम चूड़ालम कृत शशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तेषु। हाँ, कलाभ्याम चूड़ाला, ये भ्याम शब्द दो वचन, समझे कि नहीं? ये भ्याम जो कहा है ना, दो के लिए कहा जाता है। राम कृष्णाभ्याम नमः, राम और कृष्ण दोनों को एक ही बार नमस्कार करना होगा तो भ्याम लगाना पड़ेगा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, पूछा हमसे, महाराज ये राम तो राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, ये भ्याम क्या है? है? उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पूछा है, उमा और महेश्वर, उमा तो उमा हो गई, महेश्वर महेश्वर हो गए, ये भ्याम क्या है महाराज? लक्ष्मी तो लक्ष्मी हो गई, नारायण नारायण हो गए, ये भ्याम क्या होता है? है? समझ में आया कि नहीं? भ्याम क्या है? दोनों को जोड़कर है। इसलिए नारायण, यदि केवल नारायण को नमस्कार करनी हो, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्माय नमः नहीं होता है, लक्ष्मी नमः, और दोनों के एक साथ बोलना हो तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नारायण का आय भी गया, लक्ष्मी का आई भी गया, लक्ष्मी नमः नारायणाय नमः, दोनों जाकर एक आ गया। क्या आ गया? भ्याम। ये भ्याम दोनों को जोड़ने वाला है, भ्याम दोनों को अलग करने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं है, भ्याम दोनों को जोड़ता है। भ्याम क्या है पता है तुमको? हंसने की बात कर दूं, है शादी करते समय तुम लोगों ने तो शादी किया होगा ना, किया कि नहीं? शादी किया है ना? हमको तो पता नहीं भाई। वर और वधु है ना, लड़का और लड़की दोनों के स्वयंवर के समय में दोनों के कंधे में एक कपड़ा होता है कि नहीं, और बीच में जो गांठ होती है ना उसका नाम व्याम। क्या है? बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? वर और वधु के बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? दो कपड़ों के छेड़ा बांध देते हैं ना जनेऊ सुपारी पैसा डालकर, उस ग्रंथि का नाम व्याम है। मतलब क्या हुआ? वो दोनों को जोड़ रहा है। हाँ, शादी हो जाने के बाद वो गांठ फूका खोल दिया जाता है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या हुआ? दोनों को उसने जोड़ रखा। ना लड़के के कंधे से कपड़ा हटेगा, ना लड़के के कंधे से हटेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके कंधे में भी वो ऐसा रहेगा, उसके में भी ऐसा रहेगा, वो सब कुछ उसको संभालेंगे, नहीं गिर ना जाए कहीं, क्योंकि वो भ्याम है ना दोनों को जोड़ने वाला। उसके बाद तो गांठ कपड़े में लगाई थी, गांठ पड़ गया हृदय में। गांठ लगाया था कहां? कपड़े में। पड़ गया, पड़ने गया कहां? गांठ ग्रंथि कहां पड़ गया? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ और चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई, हालांकि जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ना संभव ही नहीं है, यद्यपि मृषा फिर भी छूटत कठिनाई। और गांठ पड़ गया, अब क्या करोगे? मरते दम तक वो गांठ रहती है कि नहीं? मेरा पति, मेरी पत्नी, देव जी, वो गांठ मरने के बाद भी नहीं छूटता। मरते दम तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छूटता है बाबा। फोटो लटका कर कहता है मेरी पत्नी, फोटो लटका कर कहता है मेरा पति, गांठ फेर भी है, है? लेव जी, उसी का नाम क्या है? भ्याम। ये व्याकरण का शब्द है। इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान शिव की स्तुति में नमः शिवाभ्याम, नमः शिवाभ्याम, नवयौवनाभ्याम, परस्पराश्लिष्ट बपुरधराभ्याम। ये इसका मतलब आधा पार्वती आधा शिव, दोनों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परस्परा बपुरधराभ्याम, आधा शरीर शिव जी के, आधा पार्वती के। ये नागेंद्र कन्या दिशकेतनाभ्याम। तो यहां भ्याम शब्द से कलाभ्याम, दोनों की कलाओं में, कलाभ्याम चूड़ालंकृत। कला शब्द का दार्शनिक अर्थ बहुत है। वेद प्रतिपाद्य तत्व को नाम कला कहते हैं। वेद प्रतिपाद्य तत्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद द्वारा, उपनिषद द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसी को कला कहते हैं। इधर शिव है तो उधर ब्रह्म विद्या है। शिव में ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म, और शक्ति में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए कालिदास जी ने कहा, वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्त जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वाणी और अर्थ दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ कहीं रहे और वाणी कहीं रहे। इसी तरह ऐसा नहीं कि शिव कहीं रहे और शक्ति कहीं रहे, हा? शिव शक्ति एक ही साथ रहते हैं। चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम, शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उसकी कला माने एक अंश, सोलह में से एक अंश, एक अंश माने द्वितीया का, अर्धचंद्र को शशिकला, पूर्ण चंद्र को शशि, अर्धचंद्र को शशिकला। जिन्होंने सिर में चूड़ालम, चूड़ा अलंकृत सिर के, सिर में दोनों की जटा है, वो पार्वती की भी जटा है और शिवजी की भी जटा है, दोनों ने जटा में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं, ये तो पुरानी मान्यता है, आप लोग भले कुछ भी कहो, एक मान्यता है कि चंद्रमा के बीच में एक खरगोश रहता है, है ना? आजकल तो कहते हैं एक बूढ़ी माई चरखा काटती है, ऐसा कहते हैं ना। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, एक बूढ़ी माई वो चंद्रमा के बीच में बैठकर चरखा चला रही है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन पुरानी मान्यता है कि उसके बीच में शशि रहता है, शशि माने सासलो, ससलो खरगोश, खरगोश को नाम सस कहते, सस, और सस संस्कृत शब्द है, और उस सस से गुजरातियों ने ससलो कर दिया, तो मूल संस्कृत से ही लिया है गुजराती शब्द ससलो। तो चंद्रमा के बीच में वो सस रहता है, ससलो, तो सस रहने के कारण उसका नाम शशि हो गया। शशि का एक अंश कला, शशिकला, जिन्होंने अपने सिर के मुकुट में धारण किया हुआ है, ऐसे दोनों को नमस्कार करता हूं। कलाभ्याम चूड़ालंकृत शशिकलाभ्याम निज तपः फलाभ्याम, दोनों एक दूसरे के तप के फल है। शिव पार्वती के तप के फल है, तो पार्वती शिव के तप के फल है। पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव ने घोर तपस्या की है, और शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की है, और कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती ने शिव को पाया और शिव ने पार्वती को पाया, दोनों क्या हो गए, तप फलाभ्याम, ये तपस्या का फल है, समझे नहीं? शंकराचार्य जी ने उस प्रसंग का स्मरण किया, आप लोगों को पुराण का प्रसंग मालूम ही है कि पहले भगवान शिव की पत्नी का नाम था सती, सती दक्ष पुत्री थी और शिव को बहुत प्यारी थी, और दक्ष प्रजापति के द्वारा उद्दंडता करने का परिणाम यह हुआ अंत में कि सती का शरीर नष्ट हो गया, और जब शिव को पता चला कि सती का शरीर खत्म हो गया, तो आगे का प्रसंग आप लोगों को मालूम है कि शरीर को ही वो साथ में लेकर चलते रहे, कई दिन तक तो वो शरीर, मृत शरीर को ही ढोते रहे, पुराण के प्रसंग है। अंत में देवताओं ने विचार किया कि ये तो बहुत विडंबना हो जाएगी, भगवान शिव तो सती के शरीर के अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं कर रहे, उनका ध्यान तो केवल उसी में जा रहा है। तो सब ने विष्णु को कहा, और विष्णु ने कहा कि ठीक है, अब कुछ करना पड़ेगा, तब भगवान को शिव को पता ही नहीं चला। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्रों से चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए उस मृत शरीर के। 52 52 शक्तिपीठ हुए। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां आज चैतन्यमय, क्योंकि सती का शरीर आपका और हमारा जैसा शरीर नहीं था। यदि आप हम का शरीर होता तो शिवजी लेके चलते और तभी सुरक्षित रहता क्या? सड़ जाता, कीड़े पड़ते कि नहीं? कई वर्षों तक लेके घूमे, कीड़े नहीं पड़े। क्यों? वो तो चिन्मय बपू था। चिन्मय बपू होने पर भी, क्योंकि उसके प्रति उनकी आसक्ति को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने उनके टुकड़े कर दिए और जहां जहां जो जो अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ हो गया। तो 52 शक्तिपीठ पुराण में प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान शिव ने संकल्प कर दी, अब मैं संसार में कुछ नहीं करूंगा, पर जाके कैलाश में बैठ गए और तपस्या में लग गए और कठोर तपस्या की। और उनके तपस्या करने का परिणाम यह हुआ, इधर वृत्रासुर या एक असुर, उसने वरदान मांग ली थी कि मेरी मृत्यु हो तो शिवजी के पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। अब वो ये जानता था कि शिवजी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा, जाके कैलाश में तपस्या में लग गए और उनका अब शादी नहीं होगी, सती मर गई और दूसरा शादी नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मारेगा, तो मेरी यदि मृत्यु हो तो शिव पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। परिणाम ऐसा उद्दंड हो गया कि सारे देवी देवताओं को सताने लग गया। तो सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लग गए कि भगवान शिव ये तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, अब आपको शादी करना पड़ेगा और एक बेटा पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर इसी को मारेगा, तब जाकर हमको शांति मिलेगी। भगवान शिव तो कठोर तपस्या में लगे थे, क्या करें? तो उन्होंने उसी संकल्प से तपस्या की। परिणाम क्या हुआ? वो सती पर्वत के पुत्री होकर पैदा हुई। मैना और पर्वत के संयोग से पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। तो कहा कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं, अब क्या करें? बोले नहीं नहीं, आप जब से सती के देह त्याग के पश्चात तपस्या करने लग गए तब से लेकर आज तक सती इधर पार्वती के रूप में पैदा हो चुकी है, आपके तपस्या का फल है। पुराण में यह वर्णन है, इसलिए यहां शंकराचार्य ने उस प्रसंगों को स्मरण किया। पार्वती जो है वह शिव तप का फल है। और इधर पार्वती ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, शिव के अलावा किसी से नहीं। और बहुत समझाया गया कि तुम उसके ब्याह शादी करने का प्रतिज्ञा मत करो, उसके पास न रहने का घर है न खाने की। शिव हापुस आम खाते हैं कि नहीं है? बोलो, तुम्हारे हापुस आम की अपेक्षा तो धतूरा खावे भांग धतूरे, रहे काज सभी काम पूरे, ना उनका भोजन ढंग का है, न घर कहीं है उनका, स्मशान उनके संपत्ति क्या है, वैभव क्या है? स्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सृगपि निर्करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। और ऐसे से तुम शादी करने की बात करती हो पार्वती, ऐसा मूर्खता मत करो, इससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। पार्वती ने नहीं माना। पार्वती ने आगे जवाब दिया, भगवान का ये सोल स्वभाव सब कुछ अमंगलमय होता हुआ भी स्मर्तृणाम परमम मंगलमयम। शिव भांग खाते हैं इतने स्मरण कोई करे ना उसका मंगल हो जाएगा। शिव अशुद्ध भस्मी लगाते हैं इतने स्मरण करे तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। स्मरण करने वालों को परम मंगल होता है, इसलिए मैं शिव को छोड़कर और से शादी नहीं करूंगी। तपस्या करने लगे। कहते हैं पार्वती पहले बहुत काली थी, मेरे जैसे बहुत काली थी। जंगल में तपस्या करने लग गई, शिव जी गए घूमते हुए, देखा शिव जी बहुत गोरे, कर्पूर गौरव है ना, शिव जी कैसे हैं, गोरे हैं कर्पूर गौरव, और पार्वती काली। शिव जी ने कहा कि ऐसे काली से कोई शादी करता है, तू ये बहुत काली है, नहीं करूंगा तेरे से शादी, चल पड़े। गोरी होती तो फिर भी मैं सोचता, ऐसे काली से नहीं करूंगा। तो पार्वती ने जब ये सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि तपस्या करके भी मैं गोरी होकर भी शिव जी से शादी करूंगी। तो घोर का कब तपस्या करने लग गई, कठोर तपस्या करने लगी। और उस तपस्या, क्योंकि शिव गोरे थे, पहली बार पार्वती ने देखा गोरे हैं, तो उनके गौर वर्ण का ही उन्होंने हृदय में ध्यान किया और तपस्या किया। करते करते पार्वती गोरी हो गई एकदम। तब उनकी मां ने उसका नाम रख दिया, अरे तू तो बड़ा काली थी अब तो गोरी हो गई, तब उसका नाम पड़ गया गौरी। हाँ। तो शिव ने देखा ये काली थी अभी गोरी हुई कि नहीं जरा देखें तो सही। तो आए देखा तो बहुत गोरी है, वाह अब ठीक है जोड़ी मिल गई। हाँ। तो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। मतलब क्या, पार्वती के तप का फल शिव और शिव के तप का फल पार्वती। इस परस्पर शिव का पार्वती के परस्पर की तपस्या से परस्पर में उनकी प्राप्ति हुई है, इसलिए कहा निज तप फलाभ्याम। हम उसको नमस्कार करते हैं जो अपने तपस्या के फल के रूप में शिव को पार्वती की प्राप्ति, पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई है, ऐसे दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, और भक्त भी उनकी इसी तरह तपस्या करता है, भक्ति करता है, तो उनके हृदय में उस भक्ति के फल के रूप में वह शिव और पार्वती संयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति के फल के रूप में प्रकट होने के कारण उनको कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे इयम नति भवतु, यह अन्वय करना, भवतु माने मेरा यह नमस्कार होवे। शिवाभ्याम अस्तोक, अस्तोक स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने पूरा, स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने जो थोड़ा नहीं है वो पूरा। त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर, दोनों त्रिभुवन शिवाभ्याम, अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, तीनों लोक में सबके प्रति पूरे के पूरे किसी को छोड़े बिना पूर्ण रूप में तीनों लोक का कल्याण करने वाले दोनों होने के कारण क्या हुआ, अस्तोकम त्रिभुवन शिवाभ्याम। हाँ, शिव माने कल्याण, दोनों कल्याणकारी हैं तीनों भवन में। हृदय पुनर्भवाभ्याम, ये दोनों भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। हाँ, शिव और पार्वती कहां प्रकट होते हैं, भक्तों के हृदय में प्रकट होने के कारण। हृदय पुनर्भवाभ्याम आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम, हृदय में किस रूप में प्रकट होते हैं, जटाजूट के सहित नहीं, आनंद स्फुरत। पार्वती भी हृदय में, भक्तों के हृदय में यदि प्रकट होंगी तो वह आनंद के रूप में, और शिव भी यदि प्रकट होंगे तो आनंद के रूप में ही हृदय में प्रकट होंगे। ऐसे हृदय में अभिव्यक्त होने वाले उस परमात्मा यानी शिव और शक्ति को संयुक्त रूप में मैं ये नमस्कार करता हूं। ये नमस्कारात्मक शिव शक्ति की संयुक्त मंगलाचरण के द्वारा शंकराचार्य जी ने स्पंद की और आगे दूसरे श्लोक में शिव भक्ति का फल बता रहे हैं। शिव भक्ति तो उसको फिर कल देखेंगे है। हाँ, तो एक बात आज हमारे चिमन भाई जी कह रहे थे और सुबह भी कुछ माताएं कह रही थी कि बरसात ऋतु शुरू हो गया, बरसात शुरू हो जाने के कारण सायंकाल 7:30 बजे तक प्रवचन रखने पर माताओं को विशेष करके घर पहुंचना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फिर तकलीफ होती है, बारिश होता है तो 6 बजे तक ही रखे, 5:30 से 6 बजे तक, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक रखें तो आधा घंटा पहले कम करें, ये प्रस्ताव सुबह आया था तो शायद इसी के आधार पर सभी को सुविधा हो इसके लिए कल से ठीक 7 बजे पूरा करेंगे। आज हमने 7:30 भी नहीं किया, 7 भी नहीं छोड़ा, बीच में छोड़ा है ना, 7 से ऊपर 7:30 से पहले बीच में जाकर छोड़ दिया है, तो कल से 7 बजे छोड़ेंगे। और ये शिवानंद लहरी सुनते समय बड़ा आनंद आएगा, एक एक भाव ऐसे प्रकट होंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आओ। और ये 13 दिन का कार्यक्रम, आज एक दिन कम हो गया तो 12 दिन तक तो अब और भी चलेगा, तो कल से फिर नियमित रूप में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने श्लोक को भी फोटोकॉपी करके रखा है, आप लोग साथ साथ पढ़ते भी रहना और हम उसका अर्थ भी करते जाएंगे, और आपको मुझे लगता है स्तोत्र के अनुरूप आनंद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि शिवानंद है इसलिए आनंद आएगा, उसका तरंग लहर चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।